ولا عاقبت للتقوى. اور آخری انجام تو تقوی کا ہی اچھا ہے. کیا پتہ چلا کہ جس گھرانے میں تقوی ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا شوق اور نیکیوں کو کرنے کا ذوق. دو لفظ لکھی آج آپ کو تقوی کی ایک اور تعریف لکھانے لگی ہوں. یہ جم ہے آج کے سیشن کا. ہم نے کئی دفعہ بات کی ان 3 دنوں میں تقوی پہ، آج ایک بالکل مختلف اینگل لکھیے گا. میں آپ سے پوچھتی ہوں لفظ تقوی کا کیا معنی ہے؟ آپ کہتے ہیں ڈر. پوچھتی ہوں کس کا؟ آپ کہتے ہیں جہنم کا. اور آپ کہتے ہیں کہ گناہوں کا ڈر. بات واضح، اسی سے ملتی جلتی بات ہے نا. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ لیکچر بھی سن لیا ہوگا رمضان اور تقوی، جس میں تقوی کے ڈیفرنٹ اینگل ہیں. چلیے پھر تو آپ کا جواب بہت درست ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ تقوی کے 2 ڈائمینشن ہیں. دیکھیے آپ کی میری 2 آنکھیں ہیں نا، الحمدللہ اللہ سب کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے اور ہم اس سے قرآن کے یہ موتی چنتے ہی رہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا موقع آئے تو بندہ پہلے ٹھٹک جائے، یعنی یہ ایک تیسری آنکھ لگ جاتی ہے اندر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گناہ سے بہت دور یہ بھی ہوتے ہیں تو نظر آ جاتا ہے نہیں یہ نہیں کرنا. مثلا دیکھیں سانپ اور رسی کا فرق، یہ تقوی کی آنکھ سے دکھتا ہے. یہ آنکھ بند ہو نا تو انسان گناہوں کی، حرام کی، نافرمانیوں کی رسیاں پکڑی ہوتی ہیں کہ یہ دیکھو کتنی پیاری ہے، یہ ریشم ہے، یہ فلاں. لائٹ کوئی گول دے تو بتا وہ ہو یہ تو سانپ تھا. تو حرام کی ہر چیز کہہ لیجئے کہ وہ سانپ ہے. تقوی کی آنکھ سے پہلی پتہ لگ جاتا ہے اور وہ ہو گئی. ہم پڑھیں گے 16ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کے قصیدے بیان کرتے ہوئے دکھتے ہیں کہ اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پہ میں تکیہ لگاتا ہوں، اسے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بڑے کام ہے. فی ہماری بنخرا، اللہ کہتا ہے ہلکے ہاتھ پھینکو اس کو. ہم کچھ چیزوں کو اپنے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں، اسینشیلز آف لائف، پر اللہ کی نظر میں وہ لاٹھی ہیں. اور مال حلال ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے علاوہ ہر چیز پھر ایسی ہی چیز ہے کہ جس سے بچنا تھا. تو جب تقوی آتا ہے نا تو بندہ گناہ کے موقعوں پہ ٹھٹک جاتا ہے. کچھ لوگ شروع میں ٹھٹک جاتے ہیں. اچھا کچھ ایسے ہیں کہ نہیں 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 ابھی تو نہیں پتا کیا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا کیا ہے، تھوڑے سے قریب جاتے ہیں، پکڑنے لگتے ہیں نا گناہ کو، دوسرے لفظوں میں کہلے گناہ کرنے لگتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اوہو یہ کیا کر رہا ہوں میں. الحمدللہ اس کا مطلب کہ تقوی کی آنکھ کمزور تو ہے، آئی سائٹ اس کی، اس کا ویژن ویک ہے، بٹ ہے ابھی نگاہ ہے. ایک جملہ جم کا لکھ لیجئے، جب تقوی کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے اس پہ موتیاں اتر آتا ہے تو گناہ دکھتے ہی نہیں. پھر تو بندہ وہ سانپوں کو گلوں میں ڈال لے، رسیاں بنا لے، خیر وہ نافرمانی کا کام خوشی کے نام پہ ہی کیوں نہ کر لے اور کہتا لو اور کب کریں گے. لو یعنی اپنی اصطلاح میں بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، لو خوشی کے موقع پہ اللہ کو نہیں ناراض کریں گے تو اور کب کریں گے. ایک ہی بچہ ہے، اب اس کی خوشی میں نہ میں اللہ کو ناراض کروں، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. تو یہ ہے تقوی کا ون سائیڈڈ پہلو کہ گناہ کے موقع پہ بندے کو سمجھ آ جائے میں کر کیا رہا ہوں. آپ اپنے آپ سے پوچھیے، میں نے 3 دیے ہیں، آپ اس کو 10 میں بھی چینج کر سکتے ہیں. کیا مجھے گناہ دور سے دکھ جاتا ہے؟ کوئی مجھے دعوت دے، کوئی مجھے اس کی اشتہا دلائے، میری دوست کہے چلو یہ چلتے ہیں، ادھر چلتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، کبھی شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو کسی چیز کے دیکھنے سننے کو کہے تو میں ڈر جاتی ہوں. میرے اندر کے تقوی کی جو نگاہ ہے، جو اس کا ویژن ہے، وہ سٹرونگ ہے ماشاءاللہ، گلاسز تو نہیں لگے ہوئے تقوی کی آنکھ کو. بس سوچئے، پھر دوسرا پوچھے کہ نہیں میری یہ نگاہ ذرا کمزور تو نہیں، ایسی بہک جاتی ہوں، کبھی بچوں کی خوشی کے نام پہ، کبھی گھر والے، کبھی خاندان، کبھی دوست، تو کیا پھر مجھے گناہ کرتے ہوئے رب یاد آتا ہے؟ اس جگہ پہنچ کے وہ کام کر کے یاد آ رہا ہوتا ہے؟ اور یاد رکھیے اگر گناہ کرتے وقت چبھن ہو رہی ہے تو پھر بس وہ تھوڑی سی آنکھ کھلی ہے، اور اللہ نہ کرے کیا میرا یہ حال تو نہیں کہ مجھے تو دکھتا ہی کچھ ہی، کر کرا کے گناہ کی نافرمانی سے انجوائے کر کے آتی ہوں، کہتی بڑا مزہ آیا، بہت اچھی تھی، بہت نائس لگ رہا ہے، دیکھو آدھا جسم بھی جھلک رہا ہے. تو بس یہ ہے تقوی کا 1 ڈائمینشن جس سے ہم سب ہی آگاہ ہیں. وی آر ویری مچ فیملیئر وتھ دس کانسیپٹ. لیکن ایک اور دوسرا تقوی کا ڈائمینشن آج لکھیے، اور پورا مہینہ ہے آپ کے پاس، اور انشاءاللہ اگر آپ اس پہ عمل کر گئے تو مجھے یقین ہے پوری زندگی آپ کی تقوی والی ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ پہلے آدھا حصہ دہراتی ہوں جو بھی بولا ہے. तकवा क्या है? कि आपको गुनाह के मौके पे रब याद आ जाए और आप उसको छोड़ दें। तकवा का दूसरा रुख क्या है? कि नेकियों के मौके भी दिखने लगे और आप उसको पकड़ लें। बात वाज़े, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। कुछ लोगों की तकवा की ये निगाह बड़ी ही कमजोर है। हाथ में नेकी, पांव में नेकी, घर में पड़ी, डोर स्टेप पे नेकी पड़ी उनको दिखती नहीं। बस नमाज का वक्त है, नमाज नहीं पढ़ते और कहते हैं हाय अल्लाह कभी काबा ले जाए ना तो मैं तो हजरे अस्वद को चूमूंगी। इधर नबी की सुन्नतें हैं सर में, हाथ में पेश की जा रही हैं और वो कहते हैं खू केयर, सुन्नत है ना, फिर खैर है, फर्ज तो नहीं है ना। यानी सुन्नत के लफ्ज के साथ ही ऑप्शन आती है कि अच्छा ये गले में पड़ा हुआ कोई बोझ नहीं है, ये बस ऐसे ही कोई मामला है। हा? और इसके बरक्स रोजे की जालियों को चूमने का शौक बढ़ा है। बात समझ गए होंगे आप लोग। जब तकवा की ये निगाह कमजोर होती है ना तो इंसान को नेकियां नजर ही नहीं आती। बड़े बड़े बंडल्स ऑफ दी खैर, ज़ादु तकवा यही है आजकल जो हम कर रहे हैं। नेकियां नजर नहीं आती, नेकी का मौका, उनको ऑफर्स आती हैं आप ये काम कर लें। देखिए आप ये काम कर रहे हैं ना, ये नेकी का बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप हमारी इस बात पे जरा गौर करें तो फिर देखिए कि आपका कितना सदका जारी होगा। नो नो नो, आई एम एट माई ओन, नहीं मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ, नहीं मैं तो अपने लोन काम करूंगी। वल्लाहि दिन में हजारों हजारों नेकी के मौके मैं अपने फोन से देखती हूँ माशाल्लाह, जो लोग एक दूसरे को सिर्फ ये आजकल के फ्लायर्स जो आजकल गजादुल खैर के हैं या स्टूडेंट्स की शेयरिंग्स हैं जो ये फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो बिना ही ना, पता है उनको ये हो रहा है, वो शायद खुद भी लेंगे, वो अपने किसी ग्रुप में इसको शेयर नहीं करेंगे। क्यों? इट्स नॉट फ्रॉम मी, नहीं मैं नहीं किसी को सपोर्ट करती। तो लिखिए नेकियों के मौके हाथ में आ जाए, फिर बंदा उसको ना ले तो ये तकवा की कमी है। और फिर इसको आगे बढ़ाते जाइए। जब तकवा वाली नेकी की आंख खुलती है ना तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि छोटी सी नेकी को भी हकीर ना जानो, ला तहतकीरन्ना, हकीर ना जानो, चाहे तुम्हारा अपने किसी मुसलमान बहन और मर्द का भाई को देखकर मुस्कुराना ही क्यों ना हो। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जिसपे बहुत कुछ लिखा गया है और वो है कि नेकी की किस्में, शाखें। फरमाए ला इलाहा इल्लल्लाह की 60 से 70 के करीब शाखें हैं, यानी कहीं 60 है कहीं 70, और उनमें सबसे छोटी शाख यानी द स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह इमातुल अज़ाई अनि तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। आप जा रहे थे बाहर, आपके पाँव में एक पत्थर चुभा, चुभते चुभते बचा, आगे जाके देखा और ये क्या था, पत्थर पड़ा, अभी तो शुक्र है मैं बच गई, चुभा बड़े जोर से। अगर आप आगे चले गए ना तो आपने क्या किया, नेकी का मौका गुम किया। आप कहते नहीं मेरे पाँव में चुभे, किसी और के भी चुभेगा, वापिस आइए। और वो कांटा है, पत्थर है, कुछ भी, उसको उठा के साइड पे कहीं रख दीजिए। फरमाया कि ये ईमान का एक हल्का सा दर्जा है, लेकिन पता चल गया कि इस बंदे ने कलमा पढ़ा हुआ है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। अभी तक जो बात की खुलासा ले लीजिए, अपने और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देना है, फिर उस पर जम भी जाना है, रोजी रोटी यानी मर्द रोटी कमाने के शौक में और बीवियां रोटी पकाने के शौक में नमाज ना छोड़ें। लिखें आज अभी से ये अपने लिए नियत, रमजान में खास तौर पे सहरी और इफ्तारी के वक्त पे ना फजर कजा करनी है, जमात से पढ़नी है और ना मगरिब, सब खाने पीने वहीं रहेंगे और आप उठ जाएंगे कि मुझे नमाज पढ़नी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सूरह तहरीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। मोमिनो अपने आप को और अपने अहलो अय्याल को आतिशे जहन्नुम से बचाओ, जहन्नुम की आग का ईंधन बनने से बचाओ। इतनी जबरदस्त आयत है ये, इतनी जबरदस्त आयत है। पहली बात तो लिखिए कि कुरान पाक का वाहिद मुकाम, द ओनली प्लेस इन कुरान के जहां ईमान वालों को आग से डराया गया। हम तो आग के लफ्ज के साथ ही कहते हैं शुक्र है हम तो आग से फारिग हैं, वी आर फायर प्रूफ, मुस्लिम है ना इसलिए कलमा जो पढ़ा। पहली बात अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन याद रखिएगा कि ये खुशफहमी है हमारी। तो इस आयत से जो बातें निकलती हैं, पहली बात यह है कि ईमान वाले भी आग में जा सकते हैं, देखिए मैं नहीं कहती कि जाएं, अल्लाह ना करे एक भी जाए, लेकिन दूसरी बात यह है कि अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। इस रमज़ान में ख़ास तौर पे आपने, मैंने खुद को खू अनफुसकुम, तरतीब नोट कीजिएगा, पहले अपनी फिक्र फिर दूसरों की। हेल्प योर सेल्फ बिफोर हेल्पिंग अदर्स। आग से बचाना राग क्या है, वकूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन, इसके ऊपर बड़े सख्त तुंदहू किस्म के फरिश्ते हैं। अल्लाह की पनाह, यानी अल्लाह ने उस आग की शिद्दत भी महसूस कर दी कि जो दुनिया की आग से 69 टाइम मोर हॉट है। यानी रिवायत है बहुत सारी, आप किताबुल नार यानी जहन्नम का बयान पढ़ लीजिए तफहीमुस सुन्ना सीरीज में, तो हम सब को कुरान सुन्नत की रोशनी में वो आग है क्या साफ पता लग जाएगा, क्योंकि हमने इस आग को बहुत हल्का समझा। और आज के दौर के फितनों में ये भी फितना है, हम कहते हैं जन्नत है, जहन्नम कोई नहीं। हाँ अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, तो फिर बुरे करने वालों का क्या होगा? हाँ नहीं, वो मर के मट्टी होंगे। आज याद है आपको क्रिश्चियंस का एक पूरा सेक्ट है, खुद को जोहा विटनेस कहने वाले, उनका ये अकीदा है। यानी अभी तक उनमें इतना बिगाड़ नहीं आया कि जन्नत का इनकार करें, लेकिन ये आ चुका कि जहन्नम नहीं है। तो फिर आग से बचिए। लोग कहते हैं क्या हुआ, अच्छा बिलाखर हम निकल जाएंगे। और वो एक कितनी प्यारी हदीस है कि मन का ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। और वो तो बड़ी मजे की बात है कि जिसने हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, बस वो सीधा जन्नती। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, बिल्कुल सही रिवायत। लेकिन इसमें ये तो नहीं कहा कि दखल अल जन्ना से पहले क्या है। तो लिखिए, बस एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट दे के आगे चली जाऊंगी, क्योंकि इस वक्त दिल नहीं चाह रहा ऐसी बात करने पे, कि जिस पे हमारा दिल परेशान हो, क्योंकि हम तो नेकियों की नीयत के लिए बैठे हैं ना। तो याद रखिए कि ईमान वाले कलमे की बुनियाद पे, चाहे राई के दाने के बराबर दिल में ईमान है, जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला उनको ले कर जाएगा, लेकिन मशरूत है। लिखिए दो जुमले लिखिए, आपको फर्क इंशाल्लाह क्लियर होगा। एक है जन्नत में जाएगा और एक है बिल आखिर जन्नत में जाएगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। कुछ लोग डायरेक्ट फ्लाइट के साथ जन्नत में पहुंचेंगे, नो स्टॉप ओवर, और हमेशा डायरेक्ट फ्लाइट महंगी भी होती है और पसंदीदा भी होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इनडायरेक्ट और स्टॉप ओवर्स के साथ जाएंगे, और अफसोस की बात है कि ये स्टॉप ओवर्स पुल सरात पे और जहन्नुम में होंगे। तो मुसलमान बिल आखिर जन्नत में जाएगा, लेकिन उस बिल आखिर से पहले क्या है, कभी इसको तो सोचे इंसान। फमन जुख्सिहानिन नारी वउदखिलल जन्नत फकद फाज, जो जहन्नुम से या जहन्नुम की आग से आजाद कर दिया गया। एक आयत का नंबर लिख लीजिए, जाकर आप इसकी तफसीर सुन लीजिए, सबीलुल जन्ना से बेशक सुन लें, कहीं से भी सुन लें। और वो क्या है, आयत 185 सूरत आल इमरान। अभी खोलनी नहीं है आपने, बस नंबर नोट करके छोड़ दें। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स चखने वाला है मौत को। आखिरकार हर शख्स को मरना है, यकीन है इस बात का? तो पहली हकीकत है कि हर नफ्स मौत को चखेगी या चखेगा। आखिरकार हर शख्स को मरना है। अपने ऊपर लीजिए, अपने कानों को अपनी मौत की खबर सुनाइए, फिर क्या होगा? وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, और तुम सब अपने पूरे अजर क्यामत के रोज पा लेने वाले हो। ये पूरे में बहुत कुछ छुपा हुआ है। वफ़ा युवफ़ी فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ और شَرًّا يَرَهُ। हम कहते हैं अल्लाह को हमारे बड़े बड़े कामों की तो खबर हो जाएगी, छोटों की नहीं होनी। अल्लाह इज सो बिजी, हाउ कैन ही नो। यानी बाज दफा हमारी टोन क्या होती है, लो अल्लाह तो इतना मसरूफ है, कुल्ला योमिन हुआ फी शान, हर वक्त तो वो मसरूफ है। अब इतना मसरूफ बंदा ये देखेगा कि मैंने नेल पॉलिश लगा के नमाज पढ़ ली थी, और छोड़ो पिटी बातें नहीं करो। तो याद रखिए ऐसा नहीं है, उसने एक एक इन छोटी बड़ी बात का हिसाब रखा हुआ। चलिए अल्लाह के सामने पेश कर दिए गए, अदालत में खड़े हैं, कटहरे में खड़े हैं, और अब उसके बाद क्या हो रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा, फमन ज़ुख्ज़िहा अनिन्नार। इसको नोट कीजिए, जो नंबर एक फर्स्ट स्टेप, जहन्नुम से बचा लिया गया, پہلی بات، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ دخیل الجنہ، اور دوسری بات، اور پھر جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی ہے کامیاب. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. رہ گئی یہ دنیا تو یہ تو محض ایک ظاہر فریب نظر ہے. تو کیا پتہ چلا؟ واپس آ جائیے اپنے اس موضوع پہ کہ قو انفسکم واہلیکم نارا. اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں داخل کیے جائیں، اصل کامیابی اور کامیابی کا ریل سٹینڈرڈ کیا ہے کہ جہنم میں داخل کیے بغیر جنت میں جائیں. ایک چھوٹی سی مثال سے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیے. اور وہ کیا ہے؟ ایک بچہ ماشاءاللہ کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، اور ینگ بچہ، ٹین ایجر، فرسٹ اٹیمپٹ میں نہ صرف یہ کہ پاس ہو گیا بلکہ پوزیشن ہولڈر، یہ بھی کامیاب ہے نا، ٹاپر. اخباروں میں اس کے انٹرویوز اور سوشل میڈیا پہ تصویریں. اور ایک ہے جو 6 میں سے 4 مضامین میں تو پاس ہو گیا، 2 میں فیل ہے، سپلیز آ گئیں. اب کیا ہوگا؟ یا تو ایک سال اور لگائے گا، یا پھر ایک ایک کر کے یہ امتحان دے گا تو کچھ 6 ماہ کے بعد اگلے جائے گا، اور اگلا سال شروع ہو گیا تو اس کا سال ضائع ہو گیا. کیا یہ دونوں برابر ہے؟ یہی ہے اصل میں یہاں بات. جہنم سے گزر کر جنت میں آئے تو کیا آئے؟ بڑی بدبختی ہوگی. نبی کی امتی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، قرآن سنت کی روشنی زندگیوں میں تھی، استاد بھی ملے، کتابیں بھی ملیں، سہولتیں بھی ملی، پھر میں آگ میں چلی جاؤں چاہے ایک ڈبکی لگے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کو جہنم میں سب سے کم عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں میں 2 جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے، اور اس کی شدت اور حدت کی وجہ سے اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو کیا بنے گا. تو ہم سب نے نیت کرنی ہے، ارادہ بھی کرنا ہے. خواہشوں سے جنت نہیں ملتی، ورنہ تو کوئی ایک جنت سے باہر نہ رہے. سوچئے ذرا، سوچئے تو صحیح ذرا اس کو. کیا آپ اور میں اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو اپنا اصل نہیں دکھتا؟ فکر کیجئے اس بات کی کہاں کھڑے ہیں. تو چلیے کچھ پریکٹیکل ٹپس لیتے ہیں کہ رمضان ود فیملی کیسے ہوگا، اور اللہ کے نبی کی کیا سنت تھی. چند احادیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ہمارے رول ماڈل ہیں، جن کو ہم نمونہ سمجھتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یاد رکھیے، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی استاد نہیں ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے. یہاں تو اصل میں اتباع رسول بھی ہے اور اطاعت رسول بھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحیح بخاری میں موجود ہے، اور انہی کی زوجہ عائشہ صدیقہ سے یہ روایت پہنچی، کیونکہ گھر والے ہی بتا سکتے ہیں نا کہ گھر میں کسی دیندار کی کیا کیفیت ہے، باہر والے تو بہت نیک سمجھتے ہیں. تو عائشہ کی روایت سنیے گا، رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا، ہم پہ بھی آنے والا ہے، اور خاص طور پہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے. یہ وہی بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا، کمر کس لو، محنت کرنے کے لیے تیار ہو جانا. اور ان راتوں میں خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. یعنی واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی رمضان میں حکم دیتے تھے کہ اٹھو نیکیاں کر لو. اسی طرح دوسری ایک اور روایت، ترمذی 3545، ابو ہریرہ راوی ہیں. اور آپ ان احادیث کو ڈائریکٹ جا کے بکس میں سے لکھیں گے تو زیادہ اچھا لکھیں گے انشاءاللہ، یہاں تو صرف آپ کی ہیلپ کی جاتی ہے. روایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. یہ عربی میں ایک بڑا خوبصورت انداز ہوتا تھا کسی کو کیئرفل کرنے کا. کون سا شخص؟ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے، اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا، اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور وہ دونوں اسے ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے جنت کا مستحق نہ بنا سکے ہوں. راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے دونوں ماں باپ کہا، یا یہ کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لی ہو. इस रिवायत से क्या पता चला? लिखिए 3 पॉइंट हैं अपने लिए, मुहासबे के नुक्ते बना लेते हैं। इस पे इंशाल्लाह गौर व फिक्र करेंगे और अल्लाह से ये साथ साथ दुआ भी करेंगे कि अल्लाह मेरे पे इनमें से कोई बात ना हो। और साथ ही साथ चेक कीजिएगा कि हमारी जिंदगी में आज तक जितना भी वक्त गुजरा, कितने रमजान आए, तो क्या उन रमजानों में मैंने अल्लाह की रहमत से नेकियां करके कुछ इस किस्म के काम किए। पहली चीज क्या है कि रमजान का महीना आया फिर भी गाफिल रहे, सोते ही रह गए। आपसे 2 दिन पहले जिक्र किया था कि रमजान के एतबार से कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो सोते ही रहते हैं, उनको रमजान में भी नेकी की तौफीक नहीं होती, तो अल्लाह ताला आपको मुझे उसमें ना करे। और इसी तरह माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और हुस्ने सलूक ना किया और उनकी खिदमत करके दुआएं ना ली। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह हमारी मदद फरमाए। प्रैक्टिकली क्या करें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत केयरफुल थे और हमारे असलाफ की भी आदत थी, रमज़ान की रातों में अपने आप को बहुत फारिग कर लेते थे। उनकी तो आम जिंदगी भी रमज़ान की थी। सच बताऊं, यहाँ आपको हजरत अबू हुरैरा के बारे में एक वाक्य सुनाकर आगे ले चलती हूँ। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे थे, करीबी लोगों में से थे और जो इल्म हासिल करते हैं वो करीबी हो ही जाते हैं। किसी शख्स के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के नबी अबू हुरैरा की तारीफ क्यों करते हैं इतनी, तो चलो मैं उनके घर जाकर रहता हूं और देखता हूं कि इनके मामूलात क्या हैं, उससे मुझे फायदा होगा। गए, कोई बात की कि मैंने किसी वजह से कसम खा ली है तो मैं घर में नहीं जाऊंगा, तो मैं आपके साथ रह लूं? कहा बिस्मिल्लाह, मुसलमान का हक है दूसरे मुसलमान की कसम पूरी करें। वो कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा का जो मामूल देखा 3 दिन रात में, उसमें क्या था कि अबू हुरैरा के घर में रात के 3 हिस्से थे। पहले हिस्से में खुद तहज्जुद में अल्लाह को कुरान सुनाते, यानी कयामुल लैल करते और खुद करते। जब खुद सोने का इरादा फरमाते तो अपनी सौजा को उठा देते कि अब आप उठिए, और वो फिर कुरान पढ़ती और इबादत में मसरूफ होती। जब वो सोना चाहती तो घर में एक गुलाम जो मौजूद थे उनको बेदार कर दिया जाता कि आप उठिए, आप उठिए और अब आप इबादत कीजिए। क्यों? घर हो अबू हुरैरा का और रात की किसी घड़ी में उसके घर से कुरान की आवाज ना आए, ये अबू हुरैरा को गवारा नहीं था। लीजिए अपने ऊपर सोचिए इसको, अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे घरों की क्या कैफियत है? खुदा ना खास्ता हमारे भी घरों की 3 ही कैफियत तो नहीं, 3 ही टाइम तो नहीं, लेकिन वहां इबादत की जगह कुछ और चल रहा है। अल्लाह ताला आपकी मेरी सलाह फरमाए। तब हम चलते हैं आगे के रमजान के बाबरकत अय्याम के दौरान इस वक्त का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में वालिद और वालिदा का किरदार बहुत अहम है। चंद मशवरे हैं, यानी लिखिए सजेशंस फॉर पेरेंट्स, कुछ मशवरे, कुछ अच्छे काम कि आप इस साल खास तौर पे और उसके बाद फिर पूरी जिंदगी में इसको लाइफस्टाइल बनाइए कि आप क्या करेंगे। और खास तौर पे अब हम यहाँ बच्चों को साथ लेकर नेकियां करने की बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप लिखिए, फर्स्ट थिंग क्या है कि बच्चे की रोजा रखने के लिए हौसला अफजाई कीजिए। ये बात क्यों लिखी गई आपके लिए कि कुछ माएं ही अपने बच्चों को रोजा नहीं रखने देती? अभी ये छोटा है, अभी ये गुड्डू है, ये पप्पू है? और नहीं, ये भी बहुत छोटी है, नहीं इसके सर में दर्द शुरू हो जाता है, इसको माइग्रेन है, सारे जुमले काट दीजिए। देखिए, कभी आज तक भूखे रहने से कोई नहीं मरा, ज्यादा खाने से जाते हैं। तो बच्चों को कैसे रखें? अब मैं इसमें फिजिकली डिफरेंट एज के बच्चों के लिए माओं को टिप्स देके आगे चलती हूँ। पहली बात है कि छोटे बच्चे, घर के बेबीज हैं, उनको तो छोड़े, वो तो खुद ही उठ जाते हैं। अल्लाह ने उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग की हुई है ना फितरत की, तो वो तहज्जुद के वक्त पे वैसे ही उठे होते हैं। कभी 40 डेज में जो बच्चा उसको देखेगा कैसे जाग रहा होता है। लेकिन जो बच्चे आपके शौर की एज के हैं, जो उठते हैं बैठते हैं, सुबह घर का माहौल ऐसा बनाइए कि छोटे बच्चे उठ जाएं। वो आपको बस चुपके चुपके देख रहे हैं, चले आप कहते तंग करता रोता है, जो भी है आपकी मर्जी है, लेकिन मुस्लिम घरानों में बच्चा शऊर संभालते ही जो माहौल देखता है वो क्या है, फजर से पहले ही घर में रोशनियां जल जाती हैं। उनको साथ टैकल कीजिए, लेकिन उसके बाद जो बच्चों की उम्र है मतलब 5-6 साल, थोड़ी समझदारी की है, अब फजर पे उनको उठाइए, सहरी में उठाइए। ये आप कहेंगे क्या कह रही हैं आप? जी मैं बड़े पूरे शऊर से कह रही हूँ, बच्चों की हौसला अफजाई आप कैसे करेंगे कि छोटे बच्चों को आप नाश्ता कराना है ना, करवाएंगे ना सुबह स्कूल जाते हुए या 8-9 बजे, वो नाश्ता उनको अभी करा दें और उसको बता दें कि बेटा आपका रोजा जो है ये 12 बजे तक का है। बच्चे खाना खाएं सहरी में आपके साथ, आपको देखें। इसी तरह बड़े बच्चे 7 से 10 साल की उम्र जिस तरह नमाज की पाबंदी की है ना, तो इसी उम्र को आप रोजे की पाबंदी की भी कर लें। बाज़ लोग सवाल करते हैं बच्चों पे रोजे कब फर्ज होते हैं, तो मैं उसका एक बड़ा प्यारा जवाब देती हूँ बगैर किसी फिक्र की बात किए हुए, जब वो रोजा रखने के काबिल हो जाएं। इंसानी जिस्म में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस चीज की आप आदत डाल लेते हैं आपके लिए आसान है। मैं जानती हूँ आज भी कुछ लोग रोजे से हैं, भाई अब तो आने वाले हैं रोजे, एक हफ्ता रह गया, कहा क्यों सारा साल रखूं तो इस वक्त क्यों नहीं रखूं। तो जो सारा साल रोजे रखता है ना नफिल, फिर जो मेरा या मैं 20 के रोजे, उसको मुश्किल नहीं लगते, तो आपके बच्चों को भी नहीं लगेंगे। फिर इसी तरह दूसरी बात है, बच्चे ने रोजा रख लिया, अब 10 साल का बच्चा है, 12 का, बच्ची बच्ची, तो हौसला अफजाई कराएं, बात बात पर उनका रोजा नहीं छुड़वाएं। और ये नहीं कहना कि छोड़ दो और वो, तो यानी इनकरेज देम टू फास्ट, ठीक है। फिर अगली टिप लीजिएगा, बच्चों को इस बात की याद दहानी कीजिए कि सिर्फ खाना पीना नहीं छोड़ना बल्कि तकवा हासिल करने का एक जरिया है, और ये कि गुनाहों को माफ करवाने और बख्शिश का एक मौका है। यहाँ नोट कीजिएगा एक बात, बच्चे छोटे जो होते हैं ना पीबीटी से पहले उनके गुनाह अल्लाह के हुक्म से माफ होते रहते हैं। अल्लाह ने रुफी अल अकलाम वनिस्तलास कहकर नबी सल्लम से ये बात कहलवा दी कि 3 लोगों से अल्लाह ताला ने कलम उठाए हुए हैं, उनमें एक बच्चे भी हैं। आप बच्चों को रोजा रखाने के बाद या उससे पहले उनको ये बताइए कि रोजा सिर्फ खाना पीना नहीं छोड़ना बल्कि आंख का कान का भी रोजा, लड़ाई का भी रोजा, झगड़े का भी रोजा, शिकायतों का भी रोजा, एक दूसरे से उछला कूदी का रोजा। वैसे तो वो हिम्मत ही नहीं रहती, ऐसे बेचारे मासूम पिचके हुए बैठे होते हैं कि ये कभी बोले नहीं, और जरा मगरिब के बाद देखा करें फिर गाड़ी में पेट्रोल पड़ा तो भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं। तो बच्चों को बताइए रोजे की असल, जो अभी हमने तकवा पे ऊपर बात की है ना, ये बात अपने बच्चों के साथ आपने बाद में उनकी लफ्जों में और उनकी समझ से बात करनी है। आगे चलिए, नंबर 3, इनको खाने के आदाब की तालीम देना है, जैसे दाएं हाथ से खाना। इन्हें याद दिलाना है कि इसराफ हराम है और जिस्म के लिए नुकसानदेह है। यहाँ तो मुझे एक बड़ा प्यारा वाकया याद आता है, ह्यूस्टन में थे हम लोग, जिंदगी का काफी हिस्सा वहां गुजरा, और वहां की ट्रेडिशन है कि रोजा मस्जिद में ही इफ्तार होता है, औरतों मर्दों फैमिलीज का, तो वो सब लोग खाने की चीजें ले आते हैं। तो वहां एक अरब माँ थी, बेटा माशाल्लाह उसका गुपला मुपला के वाकई देखें तो मजा आ जाए, 10-12 साल का होगा बच्चा। तो मगरिब से पहले हम सब बैठे थे और वहां प्लेट्स लगती हैं और उसमें पकौड़े समोसे जो कुछ भी खाने की चीजें, बिलीव मी कि उस माँ ने खुद तो पता नहीं खजूर भी खाई कि नहीं खाई। तो जब रोजा खुल गया ना, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसके एक हाथ में शायद समोसा था, अरब थी तो कोई अरबिक चीजें भी थी, और दूसरे हाथ में कोई बन था, दोनों हाथों से उस बच्चे के मुंह में ठोंस रही है, ये दुरुस्त नहीं है। इतना मुझे प्यार आया उस माँ पे भी और उस बच्चे पे भी कि इस वक्त माँ का दिल कर रहा है कि मेरे बच्चे के पेट में ये पूरी डिश चली जाए। तो ये ना कीजिए, इसराफ भी हराम है, बड़ी बड़ी प्लेटें भर देना, थोड़ा खाया छोड़ा, थोड़ा खाया छोड़ा, ये ना कीजिए। इवन रोजा रख के रखते वक्त भी खिलाने में दायां हाथ, और दूसरी बात है कि बहुत ज्यादा भी नहीं खिलाना वरना वो और परेशान होंगे और सुस्त होंगे। फिर अगली बात देखिए कि इफ्तार खाने पर इन्हें ज्यादा वक्त ना लगाने की तरगीब करें ताकि मगरिब की नमाज पढ़ने से महरूम ना हो जाए। बच्चे मगरिब की नमाज से महरूम ना हो तो बड़े भी नहीं होंगे ना फिर, तो इफ्तार को बहुत हल्का रखें। कहेंगे ये कैसे होता है जी, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो चीज़ देखी है, जो लोग मुस्तकिल रोजे के आदी हैं बुरा साल, सिर्फ खजूर खाकर बहुत जबरदस्ती है तो पानी या जूस का घूंट और फिर मगरिब जो खाना है उसके बाद खाना है, और खजूर भी पूरी नहीं खानी। मैं नहीं कहती आप ऐसा करें लेकिन मुनासिब सा। आज चलिए बहुत ही मुश्किल सी आपको एक एक्टिविटी दूं, खास तौर पे हमारे देसी कल्चर वाले लोगों के लिए तो बहुत ही मुहाल होगी। चलिए इस साल मगरिब से पहले पहले, ठीक है, खजूर और पानी, या अगर खजूर के साथ जमजम है या खजूर के साथ चलिए आप रूह अफ़ज़ा दूध में पिए, कई लोग सोचते हैं इसके बगैर तो रोज़ा इफ्तार ही नहीं होता, करके देखेंगे भला। मगरिब की अजान हो आप पहले से खजूरें तैयार रखें, बल्कि वो भी एक एक बच्चे को कहेंगे सबको सर्व करें, दूसरा बच्चा जरा जो बड़ा है वो आधे आधे ग्लास पानी के दे दे, या दूध के या शरबत के। पहले ये दो चीज़ें खा के फौरन मगरिब पढ़िए, और ज़हब ज़म्मा वब्तलतरुक व सबतल अजर इंशाल्लाह, उस दिन समझ आएगा। फिर जो हल्ला बोलना है और जो खाना है वो मगरिब के बाद खाएं। कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि इफ्तारी के बाद खाना कैसे खाएं। कुछ कहते हैं इफ्तारी में पेट भर गया तो बाद में क्या करें। कुछ नहीं, बेस्ट तरीका ये है, पेट में ही जाना है ना, इफ्तारी भी प्लेट में जानी है और वो भी, उस पर भी बर्तन लगने हैं, दोबारा फिर डिनर के भी खाएं, टाइम भी वेस्ट होता है। तो मोमिन बहुत कय्यस होता है, वो अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करता है। यानी आप लिखिए नमाज मगरिब से पहले नहीं खाना ज्यादा। देखिए ना, अगर रोजा ही 15 मिनट बाद खुलता तो क्या करते, तो थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा। मैं कोई पाबंदी नहीं लगाती, लेकिन इतना हो के बस इफ्तारी के बाद हैंडफुल कोई एक चीज़, दो खजूरें खा लें, ताकत आ गई, और अल्लाह की रहमत से मगरिब पढ़िए। उसके बाद फिर जो भी घर में मौजूद है उसको रखिए और वो एक ही दफ़ा एंजॉय कीजिए।